மக்கள் ஒன்று சென்றைத்து சத்ராட்சா சட்டி.
Yesterday, the Murli dated 17-8-66 was being narrated.
प्रश्न दो के मध्य में बात चल रही थी. आखिर ये रावण कौन है?
The topic that was being narrated in the middle of the second page was, finally, who is this Ravan?
कोई है या नहीं है?
Is he someone or not?
हवा है क्या?
Is he wind?
कोई आत्मा है क्या?
Is he a soul?
राम आत्मा है या हवा है?
Is Ram a soul or wind?
राम आत्मा है. तो रावण क्या होगा?
A student said, a soul. Ram is a soul. So what will Ravan be? Someone said, a soul.
राम रावण दोनों एक दूसरे के दुश्मन है ना?
Both Ram and Ravan are each other's enemy, aren't they?
Basic knowledge में क्या बताया गया?
What was said in the basic knowledge?
कि हमारी आत्मा में जो पांच विकार की कमजोरियां हैं, वो रावण है.
That the weakness of the five vices that is in our soul is Ravan.
अच्छा, हर आत्मा में वो पांच विकारों रूपी कमजोरियां नंबर वार है या एक जैसी है?
नंबर वार.
Is the weakness in the form of the five vices in every soul number wise or similar? A student said, number wise.
आप कमजोर कमजोर होते जा
रहे. Baba said to a brother, speak less, let the ones who are weak in knowledge speak more.
नंबर वार कमजोरी है.
The weakness is number wise.
तो कोई आत्मा 100% काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वाली भी होगी?
So some soul must be having 100% lust, anger, greed, attachment, ego. Someone said something.
नहीं. और कोई आत्मा नंबर वार परसेंटेज में होगी?
No. And some soul will be number wise in percentage.
होगी या नहीं होगी?
होगी.
Will there be some or not? There will be.
तो पूछा आखिर ये कौन है?
So it was asked, finally, who is this one?
आखिरीन कोई तो ऐसी आत्मा होगी दुनिया में जो काम विकार में 100% हो.
Finally, there might be such a soul in the world who is 100% in lust.
नहीं तो क्यों गायन है? शंकर जी ने क्या किया?
काम को बसन किया.
Otherwise, why is it praised saying, what did Shankar ji do? He burnt Kamdev, that is, the deity of lust in the Hindu mythology, into ashes.
अब भक्ति मार्ग में तो उसे देवता बताई दी
है. Well, in the path of devotion, he is called a deity.
अब देवता में तो विकार होते ही नहीं है.
And there are no vices at all in a deity.
जरूर देवता बनने से पहले कोई दुनिया का सबसे बड़ा महाकामी होगा.
Certainly, before becoming a deity, there might have been the world's greatest महाकामी, that is greatly lustful.
जिसके अंदर जो देह अभिमान में काम विकार की अनुभूति भरी हुई है उसको भस्म किया होगा.
Who might have burnt the feeling of lust which was filled within his body consciousness.
ऐसे क्रोध विकार लोभ विकार मोह और अहंकार भी होगा.
Similarly, anger, greed, attachment and ego will also be there.
नंबर वार तो जरूर होते.
Certainly, they are number wise.
अगर दुनिया के धर्मों के हिसाब से देखा जाए,
If the religions of the world are observed,
तो इस्लाम धर्म में जितना काम विकार है और काम विकार के आधार पर जितना व्यभिचार है,
then the amount of lust that is there in the Islam religion and the amount of adulteration that is there based on lust,
उतना और दुनिया के किसी धर्म में नहीं.
It is not there to that extent in any other religion of the world.
और इस्लाम धर्म का मुखिया कौन?
And who is the head of the Islam religion?
कोई तो होगा.
There must be someone.
इस्लाम धर्म का प्रवर्तक है, आरंभ करने वाला कोई तो होगा.
There must be someone who is the founder of the Islam religion, the one who begins it.
कब से शुरू हुआ? किसके द्वारा शुरू हुआ?
When did it begin? Through whom did it begin?
क्योंकि और धर्मों की जो हिस्ट्री का सबको पता है.
Because everyone knows the history of the other religions.
बहुतों को पता है, कम से कम इस्लामियों को तो पता है.
Many know it. At least the people of Islam know.
कि आज से 2500 वर्ष पहले इब्राहिम आए और उन्होंने इस्लाम धर्म स्थापन किया.
That 2500 years ago, Abraham came and established the Islam religion.
उससे पहले और कोई भी दूसरा विधर्म नहीं था.
Before that, there was no other Vidharmi. That is, a person who accepts practices which are opposite to that set by the father.
सिर्फ एक ही धर्म था. History इस बात को बताती है.
There was only one religion. History tells us this fact.
एक धर्म था, एक ही राज्य था.
There was one religion, only one kingdom.
एक ही राजा होता था, एक प्रकार की धारणा थी.
There used to be only one king. There was only one type of inculcation.
इसलिए 2500 वर्ष की जो पहले की हिस्ट्री है, सुख शांति की दुनिया की.
That is why the history of the world of happiness and peace that was before 2500 years.
जो अंग्रेज लोग भी मानते हैं कि भारत में क्राइस्ट से 3000 साल पहले पैराडाइज था.
About which even the English people believe that 3000 years before Christ there was paradise in India.
ऐसे तो इस्लामी भी मानते हैं, उनके शास्त्रों में भी है जन्नत का जिक्र.
In fact, even the people of Islam believe it. Jannat, that is heaven, is mentioned in their scriptures too.
Jannat thi, lekin kahan thi? Ye kuch nahi bataya.
Jannat, that is heaven, existed, but nothing was mentioned about where it existed.
Aur baaki mein to prasiddh hai ki Bhagwan ne Mahabharat yuddh karaya 5000 saal pehle.
And in India, it is famous that God enabled the Mahabharat war to happen 5000 years ago.
और महाभारत युद्ध के बाद, युद्ध के बाद तो शांति होती है ना?
And after the Mahabharat war, peace prevails after the war, doesn't it?
युद्ध से पहले शीत युद्ध होता है.
Before the war, the cold war goes on.
झगड़ा चलता है अंदर अंदर.
The quarreling takes place within.
एक दूसरे की काट चलती है.
The refutation of each other takes place.
तो ये साबित होता है जो दुनिया की खुदाइयां हुई है उनमें भी ये साबित होता है कि 2500 साल 3000 साल से पुरानी कोई चीज नहीं मिली.
So it proves that the excavations that have taken place in the world, even they prove that nothing older than 2500 to 3000 years was found.
History इस बात को बताती है.
History tells us this fact.
लेकिन आज के वैज्ञानिकों ने दूसरी बात कह दी.
But the scientists of today have said something else.
कि डायनासोर मिले, उनकी हड्डियां मिल गई हैं कैलकुलेशन में, लाखों वर्ष पुरानी.
that the dinosaurs were found, their bones have been found and they are 100,000 years old when calculated.
अब वैज्ञानिकों की बात पर विश्वास किया जाए या शास्त्रों की बात पर विश्वास किया जाए?
Now, should we believe the scientists or should we believe the scriptures?
या भगवान स्वयं आकर के बताए हिस्ट्री ज्योग्राफी सृष्टि की उस बात पर विश्वास किया जाए?
Or should we believe the history and geography of the world that God himself narrates when he comes?
क्योंकि वैज्ञानिकों ने तो डार्विन थ्योरी भी निकाली.
It is because the scientists have formulated the Darwin's theory as well.
सभी ने माना कि हाँ डार्विन थ्योरी सही है, मनुष्य पहले बंदर मिसल था.
Everybody believed, yes, the Darwin's theory is right. Previously, the human being was like a monkey.
धीरे धीरे उसकी पूंछ खत्म हो गई और वो मनुष्य रूप में परिवर्तित हो गया.
And gradually, his tail disappeared and he transformed into a human being.
बाद में वैज्ञानिकों ने उस थ्योरी को झूठ साबित कर दिया.
Later on, some scientists proved that theory false.
क्योंकि वैज्ञानिक भी तो मनुष्य है ना?
Because the scientists are also human beings, aren't they?
मनुष्यों की बुद्धि विकारी होती है.
The intellect of human beings is vicious.
विकारी बुद्धि के वशीभूत होकर के वो गलत कैलकुलेशन निकाल लेते हैं.
Under the influence of the vicious intellect, they make wrong calculations.
भगवान इस सृष्टि पर आकाई है विकारी दुनिया को खलास करके निर्विकारी देवताओं की दुनिया बनाने.
God comes on this world to destroy the vicious world and to make it a viceless world of deities.
और धर्म पिताएं आते हैं 2000 वर्ष के अंदर.
Other religious fathers come within 2500 years.
Ibrahim, Buddha, Christ, Guru Nanak, etc.
Abraham, Buddha, Christ, Guru Nanak, etc.
वो अपना धर्म तो स्थापन करके जाते हैं.
They certainly establish their religion and go.
धारणाएं तो स्थापन कर देते हैं.
They certainly establish their concepts.
लेकिन पुराने पन का विनाश नहीं करते.
But they do not destroy the oldness.
पुरानी मान्यताओं का विनाश नहीं करते.
They do not destroy the old beliefs.
अंधश्रद्धा अंधविश्वास के ऊपर कुठारा घात नहीं कर पाते.
They are not able to finish the superstition, the blind faith.
भगवान इस शक्ति पर जब आता है तो पुराने धर्मों का विनाश करता है.
When God comes on this world, he destroys the old religions.
सब धर्मों का जो पुराने पड़ गए हैं, तामसी हो गए हैं.
He destroys all the religions that have become old, degraded.
क्योंकि दुनिया की हर चीज पहले सत्व प्रधान सुखदायी होती है.
Because everything in the world is first sattva pradhan, that is consisting mainly in the quality of goodness and purity, and gives happiness.
और बाद में धीरे धीरे तमो प्रधान दुखदायी हो जाए.
And later on, gradually, the religions become tamo pradhan, that is dominated by the quality of darkness or ignorance and give sorrow.
चाहे मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, चाहे कोई जड़ वस्तु.
Whether it is human beings, whether it is animals, whether it is a non-living thing.
हर चीज पहले सत्व प्रधान सुखदायी.
Everything is first sattva pradhan and gives happiness.
और बाद में तमो हो जाती.
And later on, it becomes tamo.
चार अवस्थाओं से गुजरती जरूर.
It certainly passes through four stages.
जैसे मनुष्य का जीवन.
For example, the life of a human being.
बालिका, किशोरावस्था, नौजवानी और फिर बुढ़ापा.
Childhood, adolescence, youth, and then old age.
सुख भोगने की भी क्षमता नहीं है.
In the old age, there is not even the ability to experience happiness.
तो ये सृष्टि भी चार आयामों से पसार होती है जैसा शास्त्रों में लिखा हुआ है.
So this world too passes through four stages, just as it is written in scriptures.
सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग.
The golden age, सत्ययुग, the silver age, त्रेतायुग, the copper age, द्वापर युग एंड दी आर एन एज कलयुग.
चार सीन का ये ड्रामा है.
This drama is of four scenes.
उसमें दो पहले सिंह सुख के हैं।
इन दैट द फर्स्ट टू सिंस आर ऑफ हैप्पीनेस।
सुख रूपी दिन है।
इट इज हैप्पीनेस लाइक डे।
ज्ञान सूर्य की रची हुई दुनिया है।
इट इज द वर्ल्ड क्रिएटेड बाय द सन ऑफ नॉलेज।
और बाद के दो युग द्वापर से लेकर कलयुग तक।
एंड द लेटर टू एजेस फ्रॉम द कॉपर एज टू द आयरन एज।
ये अज्ञान अंधेरे की दुनिया है।
इज द वर्ल्ड ऑफ द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस।
इस अज्ञान अंधेरे की दुनिया की रचना मनुष्य गुरुओं ने की है।
द ह्यूमन गुरुज हैव क्रिएटेड द वर्ल्ड ऑफ द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस।
इब्राहिम के फॉलोअर्स सैकड़ों नहीं हजारों नहीं अरब है।
There are not hundreds or thousands followers of Abraham. There are 1,000 million, that is Arab.
Arab ki tadad se bhi upar hai.
They are more than 1,000 million in number.
Christians ke followers bhi 100-150 crore se upar hai.
The followers of Christ are also more than 1 to 1.5 billion.
दुनिया की इतनी बड़ी जनरेशन के ऊपर आधिपत्य जमाने वाले ये देहधारी धर्म गुरु मनुष्य गुरु इन्होंने आकर के संसार में अज्ञान फैलाया।
द बॉडीली रिलीजियस गुरुज द ह्यूमन गुरुज वो कंट्रोल सच अ बिग जनरेशन ऑफ द वर्ल्ड केम एंड स्प्रेड इग्नोरेंस इन द वर्ल्ड।
और दुनिया अज्ञान अंधेरे में डूब गई।
एंड द वर्ल्ड drowned in the darkness of ignorance.
Abhi maya ka pomp and show 100-200 varsh ke andar itna zyada phailta hai.
Now the pomp and show of maya has spread to such an extent within the last 100 to 200 years.
Pashchimi sabhyata se pashchimi deshon se lekar ke Bharat tak ye sab agyan andhkar mein dub jate hai, chakachaund ho jati hai.
From the Western civilization, the Western countries, up till India, that everyone is drowning in the darkness of ignorance. It dazzles them. That is chakachond.
Kya kya nikla hai?
Various things have been invented.
Jo bhi nikla hai, wo jan samanya ke kalyan nahi usse ho raha hai.
Whatever has been invented, it is not benefiting the general public.
एटम बम निकले।
एटम बॉम्ब्स हैव बीन इन्वेंटेड।
क्या उससे जनता का कल्याण हो रहा है?
इज इट कॉजिंग बेनिफिट टू द पब्लिक?
एरोप्लेन निकले।
एरोप्लेन्स हैव बीन इन्वेंटेड।
कितनी दुनिया की परसेंटेज आत्माएं एरोप्लेन से लाभ ले पाती है?
What percentage of the souls of the world are able to take advantage of the aeroplanes?
ना के बराबर।
It is as good as none.
और भी वैज्ञानिक चमत्कार हो रहे
हैं। Still more scientific miracles are going on.
Baby tubes बनाए जाते हैं।
Baby tubes, that is, test tube babies are made.
उनसे बच्चा पैदा किया जाता है।
Through it, a child is produced.
लेकिन क्या उसमें जो आत्मा आती है वो आत्मा का परिष्करण होता है?
बट द सोल विच कम्स इन इट इज दैट सोल प्यूरिफाइड?
नहीं होता।
इट इज नॉट।
बीज को जब तक नहीं सुधारा है तब तक संसार का कल्याण नहीं हो सकता।
Until the seed is reformed, the benefit of the world can't take place.
प्रकृति के ऊपर कंट्रोल किया है मनुष्य ने।
The human being has controlled nature.
आत्मा के ऊपर कंट्रोल नहीं किया।
He has not controlled the soul.
आत्मा भी अविनाशी है, प्रकृति के पांच तत्व भी एलिमेंट्स भी अविनाशी है।
The soul is imperishable and the five elements of nature are also imperishable.
लेकिन प्रकृति मनुष्य के कंट्रोल में आ चुकी है बहुत कुछ।
but nature has come under the control of the human being to a large extent.
लेकिन इतनी control में नहीं आई है.
However, she hasn't come under control to such an extent.
जो उसको सात्विक बना करके सतो प्रधान प्रकृति बनाई सके.
That she could be made into a true, that is sattvic and satopradhan nature.
ये ईश्वर का ही काम है.
This task is of God alone.
वो ही प्रकृतिपति कहा जाता है.
He himself is called Prakritipati, the controller of nature.
वो मायापति भी है.
He is also Mayapati, that is the controller of Maya.
काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो आत्मा में कमजोरियां आ जाती है उनके ऊपर भी कंट्रोल करने वाला है.
He is also the controller of the weaknesses that come in a soul, lust, anger, attachment, greed, ego.
और मनुष्य आत्माओं को भी कंट्रोल कराने वाला है.
And he is also the one who enables the human souls to control the weaknesses.
ये पांच विकारों का कंट्रोलर मायापति कहा जाता है.
The controller of these five vices is called Mayapati.
Maya ka panja hai ye paanch vikar.
These five vices are the clutch of Maya.
To Mayapati bhi hai. Pratitipati bhi hai.
So he, that is God, is Mayapati as well as Prakritipati, that is he is the controller of Maya as well as nature.
पांच तत्व काम को पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश ये एलिमेंट्स.
द फाइव एलिमेंट्स अर्थ वाटर एयर फायर स्काई.
जिन्हें मनुष्य ने बहुत कुछ कंट्रोल कर लिया है.
विच द ह्यूमन बीइंग हैज कंट्रोल्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट.
मनुष्य का शरीर भी इन्हें पांच तत्वों से बना हुआ है.
द बॉडी ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज ऑल्सो मेड ऑफ दीज फाइव एलिमेंट्स.
पूरी काट छांट कर लेता है.
He, the human being, completely cuts and clips it.
लेकिन मनुष्य शरीर में से आत्मा जो निकल जाती है उसकी पकड़ मनुष्य के हाथ में नहीं आई.
But the comprehension of the soul which goes out of the human body has not yet come into the hands of the human being.
क्योंकि वो मायापति और प्रकृतिपति है और लक्ष्मीपति भी कहा जाता है.
Because he, that is God, is the controller of Maya, Mayapati, as well as nature, Prakritipati, and he is also called the controller of Lakshmi, Lakshmipati.
Lakshmi Narayan ka rajya Satyug mein hota hai.
The kingdom of Lakshmi Narayan is in the golden age.
Girti kala wale yugon mein, treta mein, dwapar mein, kaliyug mein nahi hota.
It isn't in the descending ages like the copper and iron ages.
तो वो संपूर्ण दुनिया बनाने वाला है.
So he is the one who makes the complete world.
कलयुगी झूठ दुनिया को पलट करके सतयुगी सोलह कला संपूर्ण दुनिया बनाने वाला है.
He transforms the false world of the iron age into the world of the golden age, complete in 16 celestial degrees.
वो आता है तो बताता है कि राम कौन है और रावण कौन है.
He comes and then says who Ram is and who Ravan is.
बेसिक नॉलेज लेने वाली ब्रह्मा कुमारियां ये बात नहीं बता सकती.
The Brahma Kumaris who take basic knowledge can't say this.
वो तो राम को ही छुपाए देती.
They indeed hide Ram.
कृष्ण की सोल को उजागर कर दिया राम का डब्बा बोल कर दिया.
दे मेड द सोल ऑफ कृष्णा फेमस एंड मेड राम अनसक्सेसफुल.
कहते हैं कि कृष्ण दादा लेखराज वो ही गीता का भगवान है साकार रूप में.
दे से कृष्णा दादा लेखराज इज हिमसेल्फ द गॉड ऑफ द गीता इन अ कॉर्पोरियल फॉर्म.
उसके अलावा और कोई मनुष्य मात्र नहीं हो सकता.
नो अदर ह्यूमन बींग अदर देन हिम can be the god of the Gita.
जबकि किताबों में लिखा हुआ है गीता का भगवान कृष्ण नहीं है.
Whereas it is written in their books
that the God of the Gita is not Krishna.
Gita ka Bhagwan nirakar Shiva hai.
The God of the Gita is incorporeal Shiva.
Are? Gita koi kitab ka naam hota hai kya?
Are, is Gita the name of some book?
Gita mata kahi jati hai. Bharat mata kahi jati hai.
She is called Mother Gita, Mother of Bharat.
Jiski vandana karte hai, poojaniya mani jati hai.
She is the one who is praised and considered as worship worthy.
To koi jad zameen ka na Bharat hai.
So, is a non-living land named Bharat?
Sarvashastra Shiromani kahi jati hai.
She is known as the jewel among all the scriptures.
Shastra mana shasana karne wali.
Shastra, that is, scripture, means the one who rules.
Vasudhaiva kutumbakam ke hisab se, sari vasudha hamara kutumb hai.
According to the slogan, one world family, that is, Vasudhaiva kutumbakam, the entire earth, world, is our family.
Khas Bharatvasiyon ke liye.
It is especially for the Indians.
Videshiyon ke liye nahi.
Not for the foreigners.
Agar unke liye sari duniya kutumb ke roop mein hoti to wo apne deshon se videshiyon ko ya Bharatvasiyon ko bhagate nahi rehte.
For them, if the entire world were in the form of a family, then they would not have kept chasing away the foreigners or the Indians from their countries.
Bharat ki aaj bhi parampara hai.
Even today, it is the tradition of Bharat.
Jo bhi videshi Bharat mein aaye,
whichever foreigners came to Bharat,
Bharat ne apni god mein un videshiyon ko jagah di.
Bharat gave place to those foreigners in its lap.
Musalman aaye, aakraman bhi kiye.
The Muslims came. They attacked as well.
Terrorists kiya.
They ruined India.
Loot lapot ki.
They looted her.
Maar-kaat machayi.
They did beatings and wounding.
Phir bhi unko jagah di.
Nevertheless, they were given a place.
Christians aaye.
Christians came.
Saare Bharat ko apni mutthi mein le liya.
They took the entire Bharat in their hands.
Ungli pe nachana shuru kar diya.
They started to make them dance on their command.
Rajai ki vyavastha tahas nahas kar di. Aapas mein ladai kiya.
They ruined the system of monarchy by making them fight with each other.
Wo Christians bhi Bharat ke har shahar shahar gaon gaon mein base hue.
Those Christians too are settled in every city and every village of Bharat.
Bhale unka raj nahi.
Even if their kingdom is not here.
To chahe Hindu ho, Musalman ho, Sikh ho, Isai ho.
Whether they are Hindus, Muslims, Sikhs, Christians.
Bharat Mata ki god mein sabhi ne palna li.
Everyone has received sustenance in the lap of Mother Bharat.
तो पालना देने वाली कोई चैतन्य शक्ति भी होगी ना.
So there must be some living power too who gives sustenance.
जिसकी वंदना की जाती है, पूजा की जाती है.
Who is praised and worshipped? Mustn't there?
वो शक्ति कौन है?
Who is that power? That is शक्ति.
ऐसा तो नहीं है उस आत्मा को धूल दूषित कर दिया गया हो.
Would it be possible that the soul, that is Shakti, has been isolated?
Wo Ravan ki jail mein aa chuki ho.
That she has gone into the jail of Ravan?
Ramayana mein likha hai mataon ka uddhar karne ke liye aata hu.
It is written in the Ramayana, I come to uplift the mothers.
Dharani mata jab bahut dukhi ho jati hai,
when the mother earth becomes very miserable,
to uska uddhar karne ke liye mujhe aana padta hai.
I have to come to uplift her.
Khas mataon ke liye.
I have to come especially for the mothers.
Hisab lagaya jaye, dekha jaye to duniya mein,
if we estimate, if we observe in the world,
jaati bandhan purushon ko hai,
do the men have more bondage?
Mataon ko hai, kanyaon ko hai ya kumaron ko hai?
Or do the mothers have more bondage, or do the kanyas have more bondage,
Father Kumar's have more bondage? A mother said, the mothers have.
आप क्यों बोलते हैं? आप माता हैं इसलिए.
Why are you saying it?
Is it because you are a mother?
आप लोग बताइए.
Baba asked the brothers, you people speak.
आज की दुनिया में.
In today's world.
माताएं भी हैं, कुमार भी हैं, अदर कुमार भी हैं, शादी किए हुए.
There are mothers, there are bachelors, that is Kumars, there are other Kumars, those who are married.
और कन्याएं भी हैं.
And there are kanyas, that is virgins too.
सबसे ज्यादा स्वतंत्र कौन है?
Who is the most independent?
और सबसे ज्यादा परतंत्र कौन है?
And who is the most dependent?
हर देश की गवर्नमेंट भी समानता में लाने की कोशिश कर रही है लेकिन नहीं हो पा रहा.
इवन द गवर्नमेंट ऑफ एवरी कंट्री इज ट्राइंग टू ब्रिंग सम सिमिलैरिटी बट इट इज नॉट बिकमिंग पॉसिबल.
तो बताइए कन्याओं माताओं पुरुषों कुमारों के बीच में सबसे ज्यादा परतंत्र कौन है?
सो स्पीक अमंग द कन्यास द मदर्स द मेन द कुमार्स हु इज द मोस्ट डिपेंडेंट?
आपको ज्ञान में चल रहे इससे फट से बता रहे.
A student said, the mothers, you have taken the knowledge, so you are answering quickly.
यहाँ कुछ लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं जिन्होंने भट्टी भी नहीं किए.
There are a few people sitting here who haven't even completed their bhatti yet.
बैठे हैं ना?
हाँ
बैठे हैं.
They are sitting here, aren't they? Yes, they are sitting here.
तो ज्ञान योग की भट्टी में पकने के बाद.
So, after becoming firm in the bhatti of knowledge and remembrance,
पूरी बात पता चल जाएगी.
You will understand the whole issue.
तो जो नए नए जैसे बैठे हुए वो बताएं.
So, the new ones sitting here, let them speak.
कि दुनिया में ज्यादा दुखी कौन है?
Who are more miserable in the world?
कन्याएं माताएं कुमार.
The kanyas, the mothers, or the kumars? A mother said, the mothers. You should not give an answer at all. A brother said something in Telugu. Yes?
To a brother, translate it in Hindi. Perhaps he doesn't know Hindi.
A brother said, the mothers, the mothers.
वो सब जानते हैं.
Everybody knows it.
घर घर की स्थिति ऐसी है.
उसको का दुखी तरह होने वाले हैं माता ना मारना वाहन होने दूसरा.
The condition of every house is like this.
ये बात ऐसे कहते हैं भारत में अर्धांगिनी है.
It is said in Bharat, she is Ardhangini. That is a partner.
आने की हकदार है. आने की हकदार है.
That she is entitled to half the share. A brother is saying something. No, no. She is entitled to half the share.
लेकिन प्रैक्टिकल में अगर देखा जाए तो बैंक बैलेंस ज्यादा पुरुषों के नाम होता है या माताओं कन्याओं के नाम होता है.
But if it is observed in practical, then is the bank balance most significant in the name of the men or in the name of the mothers and the kanyas? The mothers said, in the name of the men, all of you, don't speak.
Kiske naam hota hai?
In whose name is it more significant?
Purushon ke naam hota hai. Iska matlab?
It is in the name of the men. It means that
धन के ऊपर और मन के ऊपर भी आधिपत्य पुरुषों का जमाया हुआ है.
Men have taken control over the mother's body, the wealth and even the mother's mind.
तो माताएं controlled हुई पड़ी.
So the mothers are controlled.
बंधन में है.
They are in bondage.
ये उस भारत की बात है.
This is about the Bharat, the land.
जहाँ शास्त्रों में ये गायन है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते नमन्ते तत्र देवता.
where it is praised in the scriptures.
Netra nariyattu pujyante ramante tatra devata. Jahan nariyon ki puja hoti hai, samman se jahan dekha jata hai.
Where the women are worshipped, where they are held in high regard,
वहाँ देवताएं निवास करते हैं.
There the deities reside.
जहाँ नारियों का अपमान होता है वहाँ राक्षस निवास करते हैं.
Where women are insulted, there demons reside.
तो भगवान आते हैं माताओं का उद्धार करने के लिए.
So God comes to uplift the mothers.
उनको कहा जाता है धरणी माता.
They are called the Mother Earth.
शास्त्रों में जो नाम है वो काम के आधार पर है.
The names in the scriptures are based on the task.
धरणी माना धारणा करने वाली.
Earth means the one who inculcates.
जैसे प्योरिटी की धारणा है. प्योरिटी माना पवित्रता ब्रह्मचर्य.
प्योरिटी मीन्स चेस्टिटी सेलिबेसी.
पुरुषों में जाति प्योरिटी निभाने का ताकत होती है.
डू मैन हैव मोर पावर टू मेंटेन प्योरिटी.
या कन्याओं माताओं में प्योरिटी निभाने की ज्यादा ताकत होती है खास भारत में.
और डू द कन्यास एंड मदर्स हैव मोर पावर टू मेंटेन प्योरिटी एस्पेशली इन भारत.
लीव द मैटर ऑफ द फॉरेन लैंड अलोन. द मदर्स सेड द मदर्स बाबा इज डूइंग जेस्चर टू द मदर्स. You all don't speak.
अगर यहाँ माताएं ज्यादा बैठी हुई है तो ज्यादा बैठी हुई है, इससे साबित होता है कि भाइयों ने उनको स्वतंत्र किया हुआ है नेलू में.
If the mothers sitting here are more in number compared to the other places, someone said something. Yes, if the mothers sitting here are more in number compared to the other places, then it proves that the brothers have set them free in Nellore.
Dusri jagah ke mukable phir bhi sthiti achhi hai.
In comparison to other places, the condition of the mothers here is better.
Baat chal rahi thi ki mataen jab shakti mein bandhan mein aa jati hai to bhagwan ko aana padta hai.
The topic that when the mothers in the world come in bondage, God has to come was being discussed.
चाहे वो सीता माता हो.
Whether she is mother Sita.
और चाहे वो मंदोदरी.
और whether she is मंदोदरी.
मंद उदरी. बुद्ध रूपी पेट कैसा है.
मंद उदरी.
How is the stomach like intellect.
मंद बुद्धि है.
It is slow witted. That is मंद बुद्धि.
अंदर से राम को सपोर्ट करती है.
She supports Ram from inside.
क्या अंदर से चाहती है कि राम का राज्य हो. लंका में भी राम का राज्य हो. राम सच्चे हैं.
She wishes from inside that there should be the kingdom of Ram even in Lanka. There should be the kingdom of Ram. Ram is true.
लेकिन रावण का अपोजिशन नहीं कर पाती.
But she is not able to oppose Ravan.
छोड़ नहीं पाती.
She can't leave him.
और सीता मंदोदरी के मुकाबले उतनी बंधन में नहीं होती. नहीं बंधन में होती.
And Sita is in more bondage when compared to Mandodari.
मंदोदरी कम बंधन में और सीता जास्ती बंधन में होती.
Mandodari is in less bondage and Sita is in more bondage.
नाम क्या दिया. सीता.
What name was given. सीता.
सीता माना शीतल.
सीता means cool.
जो भाव स्वभाव से शीतल है.
The one who is cold by character and nature.
धारणा शक्ति वाली.
She has the power of inculcation.
पवित्रता की धारणा वाली है.
She is the one who inculcates purity.
ऐसी पवित्रता की धारणा जो सब गुणों की जननी है. Purity.
She has inculcation of such purity which is the mother of all the virtues. Purity.
जहाँ पवित्रता होगी वहाँ बुद्धि भी पवित्र होगी.
Where there is purity, there the intellect will also be pure.
पवित्र बुद्धि होगी मैंने सुमति होगी.
इफ इट इज अ प्योर इंटेलेक्ट देन इट मीन्स दैट देयर विल बी गुड अंडरस्टैंडिंग.
इसलिए रामायण में तुलसीदास ने लिख दिया है जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदान.
दैट इज वाई इन द रामायण तुलसीदास हैज रिटन
जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदान. तो पवित्रता की धारणा कन्या माताओं में जाती होने के कारण
Because of more inculcation of purity in the kanyas and the mothers,
भगवान जब इस शक्ति पर आते हैं तो कन्या माताओं के हाथ में कलश देते हैं ज्ञान का.
When God comes to this world, He gives the urn of knowledge in the hands of kanyas and the mothers.
अपने यहाँ कोई भी अनुष्ठान करेंगे तो कलश भर करके रखेंगे नवग्रह के पास नवग्रह पूजन के लिए.
If we carry out any rite, that is anushthan, in our country, then we fill an urn and keep it near 9 planets to worship them.
वो कलश कोई पानी का कलश नहीं है.
That urn is not an urn of water.
ज्ञान जल का कलश.
It is the urn of the water of knowledge.
तो ज्ञान जल का कलश है. शास्त्रों में गाया हुआ है.
So the urn of the water of knowledge is praised in the scriptures.
कि सागर मंथन हुआ.
The churning of the ocean took place.
माना ज्ञान सागर भगवान के सुनाए हुए ज्ञान का मनन चिंतन मंथन हुआ.
It means thinking and churning of the knowledge narrated by God, the ocean of knowledge took place.
असुरों ने भी मंथन किया और देवताओं ने भी मंथन किया.
The demons churned as well as the deities churned.
उस मंथन में से सबसे श्रेष्ठ चीज क्या निकली.
What was the most elevated thing that emerged in that journey?
अमृत कलश.
A student said, nectar, the urn of nectar.
ज्ञान अमृत का कलश.
The urn of nectar of knowledge emerged.
और सबसे गंदी चीज क्या निकली.
And what was the most degraded thing that emerged?
Hala hal vish.
Someone said something. A deadly poison, that is hala hal vish.
Vish mana vishay vikar.
Poison means poisonous thoughts, that is vishay vikar.
Yeah? Vishay vikar.
What? Vices.
To kalash kisko diya gaya?
So, who was given the urn?
देवताओं को दिया गया.
स्टूडेंट सेड द डेटीज वर गिवन द अर्न. वॉज इट गिवन टू द डेटीज.
उनको तो ज्ञान अमृत बांटा गया.
द नेक्टर ऑफ नॉलेज वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड टू देम.
लेकिन किसके हाथ में दिया गया बांटने के लिए. माता के हाथ.
बट इन हूज हैंड वॉज इट गिवन टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड. इन द मदर्स हैंड.
लक्ष्मी के हाथ. गृह लक्ष्मी जिसके थे.
In the hand of Lakshmi, the one who is called the lady of the house, that is Griha Lakshmi.
घर घर में भी तो गृह लक्ष्मी होती है ना.
In every house there is a Griha Lakshmi, isn't there?
घर की लक्ष्मी अगर अच्छी हो तो घर स्वर्ग बन जाए.
If the lady of the house is good, then the house becomes heaven.
और घर की लक्ष्मी अगर कुलक्षिणी हो तो घर नरक बन जाए.
And if the lady of the house is evil, then the house becomes hell.
तो लक्ष्मी के हाथ में कलश ज्ञान का दिया जाता है.
So the urn of knowledge is given in Lakshmi's hand.
कौन सा कलश.
Which urn.
जो मंथन करने के बाद निकलता है.
The urn which emerges after churning.
वो कलश नहीं जो ब्रह्मा कुमारियां तथाकथित बताती है.
Not that urn about which the so-called Brahma Kumaris say
कि ज्ञान कलश भगवान ने हमको दिया.
God has given the urn of knowledge to us.
ठीक है. ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय सारी दुनिया में स्थापन हो गए.
It's all right. Through Brahma, the Brahma Kumaris Godly University was established in the entire world.
गांव गांव शहर शहर में स्थापन हुए.
they are established in every village and every city.
Duniya walon ko manna padega ki ha brahma ka karya chal raha hai.
The worldly people will have to believe, yes, the task of Brahma is going on.
Brahma ke mukh se vedvani nikal rahi hai.
The verses of Vedas are emerging out of Brahma's mouth.
Ye practical baat hai.
This is the practical aspect.
Lekin jo vani nikal rahi hai, us vani ko gyan amrit nahi kaha ja sakta.
But the verse which is emerging out cannot be called the nectar of knowledge.
Amrit kyon nahi kaha ja sakta?
Why can't it be called nectar?
Kyunki jo bhi vani nikli hai Mount Abu se.
Because whichever verses emerged at Mount Abu,
Brahma ke mukh dwara,
through the mouth of Brahma,
uska manthan nahi hua jab tak Brahma jeevit rahe,
were not churned as long as Brahma was alive.
Aur manan chintan manthan jab tak nahi hota hai gyan sagar ki vani ka, tab tak wo gyan amrit nahi hai.
And until the thinking and churning of the verses of the ocean of knowledge takes place, it is not the nectar of knowledge.
Gyan ka amrit kalash nahi kaha ja sakta.
It can't be called the urn of nectar of knowledge.
To wo to jhoothi baat kehte hain.
So they say false things.
Ki humko gyan amrit kalash mila hua hai, hum Lakshmi ka paath bajane wale. Nahi.
We have received the urn of the nectar of knowledge. We are the ones who will play the part of Lakshmi. No.
Amrit kalash ki rachna hi nahi hui thi jab tak wo jeevit rahe.
As long as he, that is Brahma, was alive, the urn of the nectar of knowledge was not created at all.
Amrit kalash ka connection sagar manthan se.
The connection of the urn of nectar is with the churning of the ocean.
Unke sharir chhodne ke baad,
after he left his body,
unke dwara jo ved vani Brahma ke mukh se uchcharan ki gayi jaisa shastron mein likha hai,
the verses of the Vedas which were uttered through his mouth, just as it is written in the scriptures
ke Brahma ke mukh se ved nikle,
that Vedas emerged out from the mouth of Brahma.
Wo ved vani manan chintan manthan ki prakriya mein aane lagi.
Those verses of the Vedas started to go through the process of being thought and churned.
Aur Brahma kumari ashram mein do hisse ho gaye.
And the Brahma kumari's ashram was divided into two parts.
Chahe unko Kaurav Pandav keh do,
you may call them Kauravas and Pandavas.
Aur chahe unko Deva Asur keh do,
and you may call them deities and demons.
Kyunki shastron mein jo bhi deva ko sangram prasiddh hai,
because the struggle between the deities and the demons, that is famous in the scriptures, Devasur Sangram.
Ramayan ki katha prasiddh hai,
the story of the Ramayan, that is famous in the scriptures,
Mahabharat grah yuddh prasiddh hai,
the Mahabhari Mahabharat civil war, that is famous in the scriptures.
वो सब इस समय की बात है.
All this is about this period.
इस समय की.
About which period?
जब के एटम बम बन जाते हैं, शंकर जी का काम तैयार हो जाता है. हर हर बम बम.
When the atom bombs are prepared and the task of Shankar ji becomes ready, हर हर बम बम.
वो कार्य तैयार हुआ पड़ा है.
That task is completely prepared.
वो कोई खिलौने नहीं तैयार हुए हैं कि हमारे घर की सजावट की जाएगी.
They are not toys prepared to decorate our houses.
जो चीज बनी है वो काम में लाई जाएगी.
The things which are made will be put in work.
और धर्म पिताएं जो विनाश करते ही नहीं, पुरानेपन का, पुरानी जनरेशन का, पुराने धर्मों का.
The other religious fathers do not destroy the oldness, the old generation, the old religions at all.
ये तो भगवान है जब इस शक्ति पर आता है.
It is God alone who, when he comes to this world,
तो नई दुनिया की स्थापना के साथ साथ पुरानी दुनिया का विनाश का भी मसाला तैयार कर लेते
हैं. Has the material for the destruction of the old world prepared along with doing the establishment of the new world?
एक तरफ अमृत कलश निकलता है.
So, on one side, the urn of nectar emerges.
जो कन्या माताओं को सुपुर्द किया जाता है.
Which is entrusted to the kanyas and the mothers.
कि तुम ज्ञान जल बांटो.
Distribute the water of knowledge.
बांटा जाता है तो भी असुर चालाकी करते हैं.
Even when it is distributed, the demons use villainous, that is, they act deceitfully.
क्या चालाकी करते हैं?
What villainous do they do?
है?
Hmm?
नंबर लगाया गया देवताओं का पहले.
The deities were made to sit first in the queue.
कि देवताओं को पहले बांटा जाना चाहिए.
It should be distributed first to the deities.
वो पहले अधिकारी हैं.
They are entitled to have it first.
उनमें प्योरिटी की पावर होती है. वो धारण कर सकेंगे.
They have the power of purity. They can inculcate it.
लेकिन आसुर क्या करते हैं?
But what do the demons do?
चोरी कर लेते हैं. चुपके से नियम भंग करके देवताओं की लाइन में घुस करके बैठ जाते हैं.
They cheat.
They break the law and secretly sit in the queue of the deities.
एक तरफ विषय विचार भी पीते रहते.
On one side, they keep drinking the poison of the vices.
और दूसरी तरफ ज्ञान अमृत भी पीते रहते.
And on the other side, they keep drinking the nectar of knowledge too.
तो वो ज्ञान उनके काम आएगा?
So will that knowledge come in their use?
काम नहीं आता, लेकिन पी तो लिया ना.
It doesn't come in their use.
But they drank it, didn't they?
तो अमर हो जाते.
So they become immortal.
अमर हो जाते हैं माना?
They become immortal means.
उनकी आत्मा में वो संस्कार खत्म नहीं होते. आखिरी बनेंगे.
That the संस्कार्स ऑफ devilishness इन their सोल doesn't फिनिश.
लेकिन मर्ज हो जाते.
But it becomes merged, that is, remains suppressed.
जैसे कोई बीज होता है.
Just as some seed.
सर्दी में पौधा बनेगा.
It will become a plant in winter.
गर्मी में पौधा नहीं बनेगा.
It won't become a plant in summer.
कोई बीज होता है, गर्मी में पौधा बनता है, सर्दी में पौधा नहीं बनता.
There is one type of seed which becomes a plant in summer. It doesn't become a plant in winter.
कोई बीज होता है, बरसात में उगता है, दूसरे मौसम में नहीं उगता.
There is another type of seed which sprouts in the rainy season. It doesn't sprout in other seasons.
तो ऐसे ही ये बिंदु 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 आत्मा रूपी बीज हैं.
So similarly, these are the various points like seeds.
जो प्रकृति के मध्य में यादगार के रूप में बिंदी या टीका लगाया जाता है.
In its memorial, a tika is applied on the forehead.
ये आत्मा यहाँ निवास है.
Indicating that the soul resides here.
इस आत्मा की रोशनी आंखों में से निकल रही है.
The light of this soul is coming out through the eyes.
ये आत्मा जब शरीर छोड़ के जाती है तो आंखें बटन हो जाती है.
When the soul leaves body, these eyes become like button.
माने वो रोशनी आत्मा रूपी रोशनी निकल गई.
It means the light like soul has gone.
वो चैतन्यता चली गई.
The state of consciousness has gone.
तो आत्मा में जो आखिरी पने के संस्कार भरे हुए हैं जन्मजात जिन आत्माओं.
So even those souls in whom the संस्कार्स of a devil are filled inborn.
वो आत्माएं भी ज्ञान अमृत को पी करके अमर बन जाती.
Become immortal by drinking the nectar of knowledge.
उनको राहु केतु नाम दे दिए.
They are named राहु केतु.
कहते हैं नौ ग्रहों की दशा बैठती है तो कोई के कुंभ पर राहु की दशा बैठ जाती है.
It is said that when the nine planets influence, Rahu influences someone.
अच्छी दशा बैठती है तो कहते हैं बृहस्पति की दशा.
If it is good influence, then they say it is the influence of Jupiter, that is बृहस्पति.
बृहस्पति को देवताओं का गुरु माना जाता है.
And बृहस्पति is considered to be the guru of the deities.
तो अभी वर्तमान में कुछ विशेष आत्माएं ऐसी हैं आत्मी संस्कारों वाली.
So, now in the present time, there are some special souls with demoniac sanskars.
जो भगवान ज्ञान अमृत बांट रहा है, बटवाए रहा है, उसमें चुपके से ज्ञान भी लेती जा रही और विषय विकार भी पीती जा रही.
Who are secretly taking knowledge as well as drinking the poison of vices, where God is distributing or enabling to distribute the nectar of knowledge.
उसका रिजल्ट क्या होगा? वो उनको पता नहीं.
What will be its result? They don't know that.
अभी बाप पहचान आकर के दे रहे हैं.
Now the father has come and is giving the recognition.
ये संगम युग है, पुरुषोत्तम संगम युग है.
That this conference age is the पुरुषोत्तम conference age.
पुरुष माने आत्मा.
पुरुष means soul.
पुरुमाना पुरी, सा माना सेते, सोने वाली.
पुरुष means soul. पुर means पुरी, that is a place. शा means शेते, the one who sleeps.
शरीर रूपी पुरी में सोने वाली है आत्मा.
The one who sleeps in the body like puri is the soul.
माने पुरुष.
It means पुरुष.
वो पुरुष रूप आत्मा जो है वो इस समय दुनिया में दो रूपों में है, एक आत्मी रूप में.
That पुरुष form of the soul is in two forms at present in the world. One is in the form of the demons.
और दूसरी देव आत्माओं के रूप में.
And the other is in the form of the deities.
है तो वो देव आत्मा है, लेकिन असुरों के संग में आकर के सब असुर बन चुकी.
They too are deity souls, but after coming in the color of the company of the demons, all of them have become demons.
राम कृष्ण की आत्माएं भी जन्म लेते लेते सतयुग त्रेता में जन्म लेते द्वापर कलयुग में जन्म लेते लेते नीचे गिर चुकी.
Even the souls of Ram and Krishna have fallen down. After taking many births in the golden and the silver age, in the copper and the iron age.
गलती से उनको भगवान मान लिया.
By mistake, they are believed to be God.
वो देवताएं थी.
They were deities.
देवताओं में उच्च कोटि की आत्माएं थी.
They were the souls of the highest grade amongst the deities.
मनुष्य जब नीचे गिरता है.
When a human being falls down.
तो राक्षस बन जाता है.
He becomes a demon.
और मनुष्य जब ऊंचा होता है.
And when a human being rises up.
दिव्य गुण धारण करके तो देवता बन जाता.
By inculcating divine virtues, he becomes a deity.
गीता ज्ञान में ये बात बताई जाती है.
In the knowledge of the Gita, this is mentioned that.
कि गीता ज्ञान नर अर्जुन को नारायण बनाने के लिए दिया गया था.
The knowledge of the Gita was given to Arjun. A man to make him into Narayan, a deity.
अर्जुन नर था, मनुष्य था, मनुष्य को नारायण बनाने का ज्ञान दिया.
अर्जुन was a man, a human being. A human being was given the knowledge which makes him Narayan.
नारी द्रौपदी थी, उसको नारायणी बनाने का ज्ञान दिया गया.
द्रौपदी was a woman. She was given the knowledge which makes her Narayani.
भगवान ने ज्ञान दिया.
God gave the knowledge.
लेकिन गलती से कृष्ण का नाम डाल दिया.
But by mistake, the name of Krishna was inserted.
अब गीता में तो कई श्लोक और कई शब्द ऐसे आए हैं.
Now in the Gita, there are many श्लोक्स and many words.
जो गीता ज्ञानदाता निराकार समझा जा रहा है.
Which make us understand that the giver of knowledge of the Gita is incorporeal.
समझ में आता है कि वो निराकार था.
We understand that he was incorporeal.
वो कोई साकार नहीं था, साकार माने देह अभिमानी।
He was not a corporeal one. Corporeal means body conscious.
निराकार माने निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी।
Incorporeal means incorporeal, without vices and egoless.
तो रूप तो बनाई दिए।
So the drama that is Rupak is made.
समझने वाले समझ सकते हैं कि वो अर्जुन के रथ में आया।
Those who can understand that he came in the chariot of Arjun.
दूसरी तरफ शास्त्रों में लिख दिया है शरीरम रथम विद्धि इंद्रियाणि अयान्याहु।
On the other side, it is written in the scriptures.
शरीरम रथम विद्धि इंद्रियाणि अयान्याहु। शरीर को रथ समझ।
Think of the body as a chariot.
इंद्रियों को घोड़ा समझ।
Think of the organs as a horse.
तो साबित हो गया ना कि जिस रथ में भगवान आया वो रथ अर्जुन का रथ था।
So it proves that the chariot in which God came was the chariot of Arjun, doesn't it?
माने शरीर रूपी रथ था।
It means it was a body like chariot.
उस शरीर रूपी रथ में प्रवेश करके वो सुप्रीम सोल शिव निराकार ने
By entering in that body like chariot, Shiv, the supreme soul, the incorporeal one,
पुरुषार्थ का अर्जन कराया, कमाई कराई,
made him earn the profit of special effort for the soul, enabled him to make the earning.
अभी वो कमाई कराया है।
Now he is enabling that earning.
कौन सी कमाई?
Which earning?
जन्म जन्मांतर जो सुख मिलता है और दुख मिलता है उस सुख और दुख पाने का रास्ता बताने की कमाई।
Happiness and sorrow which we receive for many births, he shows the path to earn that happiness and sorrow.
गीता में कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाई गई है।
In the Gita, the dynamics of action, that is karma, the action which doesn't result in anything, that is akarma, the bad action, that is vikarma, have been explained.
ये कर्म की गुह्य गति भगवान के सिवाय कोई नहीं समझा सकता।
Other than God, nobody can explain this deep dynamics of karma.
और गीता के सिवाय कोई नहीं समझा सकता।
And nobody can explain except the Gita.
कुरान उसमें कर्मों की गुह्य गति के बारे में कुछ भी नहीं।
In the Quran, there is nothing about the deep dynamics of karma.
Bible में भी कुछ भी नहीं है।
Even in the Bible, there is nothing.
सिर्फ गीता है, वो भी मनुष्यों की लिखी हुई है।
Only in the Gita it is there. Even that has been written by human beings.
अब भगवान आकर के गीता ज्ञान देगा तो मुख से सुनाएगा या लिख करके गीता भेंट करेगा?
Well, if God comes and gives the knowledge of the Gita, will he narrate it through the mouth or will he write and make, that is narrate the Gita?
क्या करेगा?
What will he do?
धर्म पिताओं ने आकर के, मोहम्मद ने आकर के कुरान लिखी थी।
Did the religious fathers, did Muhammad write the Quran when he came?
Christ ने आकर के बाइबल लिखी थी। गुरु नानक ने आकर के गुरु ग्रंथ साहब लिख करके दिया था।
Did Christ write the Bible when he came? Did Guru Nanak write and give the Guru Granth Sahib when he came?
या डायरेक्ट मुख से बोला था?
Or did he speak it directly through his mouth?
क्या किया था?
करेक्ट मुख से बोला।
What did he do?
डायरेक्ट मुख से आकर के बोलता है, उसे लिखने की क्या आदत है?
He comes and narrates it directly through the mouth. Where is the need for him to write it?
तो भगवान भी आकर के कोई मनुष्य शरीर में प्रवेश करता है।
So, even God enters some human body when he comes.
रथ में मनुष्य शरीर रूपी रथ।
He enters a chariot like human body.
उसमें जो इंद्रियां हैं, ये घोड़े का काम करती
है। In that the organs do the work of a horse.
इन इंद्रियों को गोली छूट दे दो तो मनुष्य गड्ढे में चला जाएगा।
If you leave these organs with free will, then the human being will go in the ditch.
इनको लगाम लगा के रखेंगे तो शरीर रूपी रथ सही काम करेगा।
If you rein them, then the chariot like body will work accurately.
बीमार भी नहीं पड़ेगा।
It won't become ill either.
समाज की नजरों में भी श्रेष्ठ रहेगा, भगवान की नजरों में भी श्रेष्ठ रहेगा।
It will remain superior in the eyes of the society as well as in the eyes of God.
सरकार भी जो भ्रष्टाचारी सरकार है वो भी अंत में मान लेगी।
The corrupted government will also finally accept
कि ये शरीरधारी आत्मा अच्छा कार्य करने वाली
है। That this soul bearing a body, that is शरीरधारी आत्मा, is the one that plays a good role.
तो शरीर रूपी रथ में भगवान आता है निराकार शिव।
So God incorporeal Shiva enters into the chariot like body.
वो निराकार शिव गर्भ से जन्म नहीं लेता।
That incorporeal Shiva doesn't take birth through a womb.
क्या? वो एक ही आत्मा ऐसी है जो गर्भ से जन्म नहीं लेती। क्यों नहीं लेती?
What? Only that soul is the one who doesn't take birth through a womb. Why doesn't he take birth through womb?
क्योंकि वो कर्मों की गुह्यगति को जानने वाली।
बिकॉज ही इज द ओनली वन हु नोज द डायनामिक्स ऑफ कर्म।
जो खुद ही 100% कर्मों की गुह्यगति को जानने वाला होगा वो कर्म बंधन में आवेगा क्या?
विल द वन हु हिमसेल्फ नोज 100% द डीप डायनामिक्स ऑफ कर्म कम इन द बॉन्डेज ऑफ कर्म?
जो दूसरों को कर्म बंधन से छुड़ाने वाला है,
द वन हु रिलीजेस द अदर्स From the bondage of karma,
राजयोग सिखाने वाला है।
The one who teaches राजयोग
बताता है तुम बच्चे कर्म योगी बनो, हठ योगी न बनो।
Says children
become karma yogi, that is the one who stays in yoga while doing karma. Don't become hatha yogi, that is those who practice rigid physical exercises.
हाथ पांव बैठ करके बांध करके बैठ गए और भगवान को याद करने लग पड़े, ये आर्टिफिशियल याद है।
इफ वी सिट विद अवर हैंड्स एंड लेग्स टाइड अप एंड स्टार्ट टू रिमेम्बर गॉड, दिस इज एन आर्टिफिशियल रिमेम्बरेंस।
कोई महबूब अपनी महबूबा को हाथ पांव बांध करके नहीं याद करता है।
नो लवर रिमेम्बर्स हिज बिलवड विद हिज हैंड्स एंड लेग्स टाइड अप।
कारखाने में काम करेगा तो भी याद आएगी।
इवन इफ ही वर्क्स इन अ फैक्ट्री He will remember her.
कोई माँ अपने बच्चे को हाथ पांव बांध करके याद नहीं करती।
No mother remembers her child with her hands and legs tied up.
रोटी पकाते भी बच्चे की याद आती है।
Even while making roti, she remembers her child.
वो असली याद।
That is a real remembrance.
याद को मनुष्यों ने, भगवान की याद को मनुष्यों ने आर्टिफिशियल बना दिया।
The human beings have made the remembrance of God artificial.
ढोल मजीरा बजाए बजाए की याद करते।
They remember him by playing the drums and cymbals.
गीत लगा के याद करते।
They play a song and remember him.
ये सब है हठयोग, जबरदस्ती।
All this is हठयोग, by force.
क्यों? जबरदस्ती इसलिए है कि भगवान की असली पहचान नहीं है किसी को।
Why? It is remembrance by force because nobody has the real recognition of God.
रामायण में लिखा है जे जानोते देव जनाई और जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई।
It is written in the Ramayana, जे जानोते देव जनाई और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई।
जिसको भगवान आकर के ज्ञान देता है वो ही जान सकता है भगवान की पहचान।
Only the one to whom God gives knowledge when he comes can know the recognition of God.
भगवान के अलावा भगवान की पहचान कोई 100% नहीं दे सकता।
Other than God, nobody can give 100% the introduction of God.
दूसरे जितनी भी पहचान देंगे वो अधूरी पहचान देंगे।
Whatever introduction the others give will be an incomplete introduction.
भगवान के सन्मुख पहुंच करके सानिध्य में आकर के जो जितनी गहराई से भगवान को पहचानेगा वो दूसरा नहीं बता सकता।
The extent to which someone will recognize God deeply by coming face to face with God, by coming in the proximity of God, nobody else can explain to him and make him recognize to that extent.
वैसे भी कहते हैं किसी मनुष्य की करनी को जानना हो, चलन को जानना हो तो उसके साथ रहने से ही पहचाना जा सकता है।
As a matter of fact, it is also said, If you want to know the acts and behavior of any human being, you can know it only by living together with him.
कोई मनुष्य किसी मनुष्य की गहराई को जानना चाहे.
If any human being wants to know the depth of some other human being,
तो दूर रह करके उसकी गहराई क्या है नहीं जानी जा सकती.
Then by living far away, he won't be able to know his depth.
पास में रह करके ही जाना जा सकता.
He can know only by living near.
तो भगवान भी इस शक्ति पर आकर के किसी मनुष्य रथ में प्रवेश करके मनुष्य रूप में कार्य करता है.
So, God also comes in this world and enters in a human chariot and does the task in the form of a human being.
और मनुष्यों की बनाई हुई गीता में भी लिखा हुआ है.
It is also written in the Gita made by human beings.
कि मुझे साधारण तन में आए हुए भगवान को मूढ़मति लोग नहीं पहचान पाते.
People with a dumb intellect can't recognize me, God, who has come in the ordinary form.
वो अपने अहंकार में रहते.
They remain in their ego.
बुद्धि का अहंकार बहुत बड़ा अहंकार होता है.
The ego of the intellect is a very big ego.
तन सुंदर हो उतना बड़ा अहंकार नहीं चढ़ेगा.
If the body is beautiful, the ego will not rise to such extent.
धन अरब खरब हो उतना बड़ा अहंकार नहीं चढ़ेगा.
If someone has billions and trillions of wealth, the ego will not rise to such extent.
लेकिन कोई के पास बुद्धि है.
But if somebody has intelligence,
और बुद्धि के आधार पर 10 20 50 को कंट्रोल करके रखता है.
And on the basis of his intelligence, he controls 10 20 50 people.
तो उसको बहुत अहंकार करता
है. Then his ego rises a lot.
ये बुद्धि का परिवर्तन करने के लिए परमात्मा को आना पड़ता है. बुद्धि माने आत्मा.
God has to come to transform this intellect. The intellect means the soul.
मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है.
The mind and intellect itself is called the soul.
आत्मा कोई दूसरी चीज नहीं है.
The soul is not any other thing.
शरीर मुर्दा हो जाता है तो ये नहीं कहा जाता.
When the body becomes a corpse, it is not said
कि मन बुद्धि इसमें रह गई.
That the mind and intellect remained in it.
नहीं, मन बुद्धि रूपी आत्मा ही उड़ गई.
No, the soul in the form of the mind and intellect itself flew away.
जिस आत्मा में अनेक जन्मों के संस्कार बने हुए हैं बुद्धि में, वो आत्मा शरीर से अलग हो जाती.
The soul which is filled with the sanskars of many births in its intellect becomes detached from the body.
शरीर में आत्मा निकल जाने के बाद सारे तत्व मौजूद है.
All the elements are present in the body after the soul leaves it.
नाक आंख कान हाथ पांव पांच तत्व.
The nose, eyes, ears, hands, legs, the five elements.
क्या निकल गया?
What went away?
वो मन बुद्धि की पावर निकल गई, वो रोशनी निकल गई, वो चैतन्यता निकल गई.
The power of the mind and intellect went away. The light went away. The life that is चैतन्यता went away.
तो वो चैतन्य आत्मा जो बीज है, ये शरीर वृक्ष है.
So, the living soul is the seed. The body is the tree.
वो बीज मूल रूप में जैसा होता है वैसा ही अपना पार्ट बन जाता
है. The seed plays its role according to how it is in its original form.
कोई आत्मा राक्षसी स्वभाव की है.
Some souls are demonic in nature.
भगवान भी भले आ जाए, ब्रह्मा भी नीचे उतर आए तो भी नहीं तब्दील होती.
Even if God himself comes, even if Brahma himself descends, they do not change over. Tabdil, that is transform.
कोई आत्मा ऐसी है जो भगवान के आने पर राक्षसी स्वभाव त्याग करके.
Some souls are such that when God comes, they renounce their demonic nature.
जो उनको संघ के रंग से मिला है, विधर्मियों के संघ के रंग से.
Which they obtained through the color of the company of the Vidharmis, that is the ones who have inculcations opposite to that said by father.
उसको त्याग देती है और दैव पद प्राप्त कर जाती.
they renounce it and obtain the post of a deity.
तो भगवान आकर के अभी पहचान दे रहा है राम कौन है और रावण कौन है.
So God has come and is giving the introduction of who Ram is and who Ravan is.
राम रावण बन जाता है, कृष्ण कंस बन जाता है. कब?
Ram becomes Ravan and Krishna becomes Kans. When?
कब?
Someone said something. When?
कलयुग के अंत में संग के रंग में आते
आते. At the end of the Iron Age, while coming in the color of the company.
जो आखिरी धर्म दुनिया में फैले हुए हैं, मानवीय धर्म दुनिया में फैले हुए हैं.
The demonic religions which are spread in the world. The human religions, that is Manviya Dharma, which has spread in the world.
उन विदेशियों के चक्कर में आकर, विदेशियों के चक्कर में आकर के राम कृष्ण की आत्माएं भी नीचे गिर जाती.
By coming under the influence of those Vidarmis, those foreigners, the souls of Ram and Krishna also fall down.
एक शिव सुप्रीम सोल ऐसा है जिसको किसी के संग का रंग नहीं लगता.
Only Shiv, the supreme soul, is the one who isn't colored by the company.
Uski yaadgar hamare mandiron mein dikhai gayi.
Its memorial is shown in our temples.
Bharatvarsh mein aur videshon mein sabse jaasti mandir kiske bane hue hain?
In India and in the foreign countries, whose temples are made the most?
Koi aisa devta hai jiske sabse jaasti mandir bane?
Is there any deity whose temples are made the most?
Jiski sabse jaasti murtiyan bani.
Whose idols are made the most?
Ling murtiyan bhi bani hai, vigraha bhi bana hai.
The idols of the ling are made as well as the individual idols.
Usko kehte hai Shiva Shankar Bholenath.
He is called Shiv Shankar Bholenath.
Wo yaadgar is baat ko batai rahi hai.
That memorial is showing us
ki wo maa ka swarup bhi hai uske saath.
That there is the form of the mother as well with it.
जो जलाधारी बनी हुई है वो माता का रूप दिखाया गया.
The jaladhari which is made is shown as the form of the mother.
स्त्री का अंग दिखाया गया.
The organ of a female has been shown.
और लिंग रखा हुआ है पुरुष रूप दिखाया गया.
And the ling has been kept. The form of male has been shown.
और साथ ही साथ दोनों दिखाए गए.
And they are shown together.
क्योंकि भगवान आकर के प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करता है.
Because God comes and establishes the household path.
सन्यासियों की तरह स्त्री पुरुषों को अलग करना नहीं सिखाता.
He doesn't teach to separate female and male like the sannyasis do.
वो सिखाता है इंद्रियों को कंट्रोल करना.
He teaches to control the organs.
सन्यासी तो कायर है.
The sannyasis are cowards.
गरबा छोड़ करके इसलिए जाते हैं कि साथ में रह करके पवित्र नहीं रह सकते.
They leave their household and go because they can't remain pure by living together.
भगवान आकर के सन्यास योग नहीं सिखाते.
God doesn't teach sannyas yoga when he comes.
वो भक्ति भी करना नहीं सिखाते.
He doesn't teach to worship either.
भक्ति में तो अंधश्रद्धा होती है, वो मनुष्य गुरु सिखाते.
There is blind faith in devotion. It is taught by the human gurus.
भगवान आकर के ज्ञान देता है.
God comes and gives knowledge.
और शास्त्रों में लिखा हुआ है मेरी ते ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती.
And it is also written in the scriptures.
मेरी ते ज्ञानान्न मुक्ति.
Without knowledge, there is no liberation.
भगवान आकर के वो ज्ञान देता है.
God comes and gives that knowledge.
ज्ञान माने जानकारी.
Knowledge means information.
से बनता है ज्ञानी.
From which we become knowledgeable.
भारतीय गवर्नमेंट में आकर के उसका नाम पड़ा डाल दिया जानता पार्टी.
In the Indian government, it was named the Janta Party.
वो तो सिर्फ नाम बताए दिए है.
It is just the name that was given.
अगर जानता पार्टी है.
If it is the Janta Party.
बोल सकती है.
If it is true,
तो ये बताए कि ये कपड़े का झंडा कभी विश्व विजय करता है.
Then they should answer whether the flag of cloth will achieve victory over the world.
विश्व विजय करके दिखलावे तब हो प्रभु हमारा झंडा ऊंचा रहे.
Our vow will be accomplished when we achieve victory over the world. Let our flag be held high. Will the flag of paper or cloth achieve victory over the world? Will human being achieve victory over the world? Or will the cloth achieve it? There are three cloths, cloth like bodies.
The green cloth is the memorial of Brahma.
The white cloth is the memorial for the pure stage of Vishnu. These are cloth like bodies. And the red cloth is an indication of the revolution of Shankar.
He makes the blood of thought flow in the mind and intellect. This is a subtle revolution of knowledge. And through the subtle revolution, there will also be the physical revolution all over the world. The physical blood will also flow.
जो परमात्मा का ज्ञान सुनकर संदेश लेकर के परिवर्तन नहीं होगी.
Whose of those who take the knowledge of the supreme soul receive the message but do not transform.
उनका खेल खराबा होना, खून खराबा होना.
Their game has to end. The bloodshed has to take place.
जो भगवान के बच्चे बनेंगे.
Those who will become the children of God.
Brahma ke mukh se Bhagwan aakar ke jo gyan sunata hai, mukhvanshavali Brahman banata hai.
With the knowledge which God narrates through the mouth of Brahma and he comes, he makes the mouth born Brahmins.
Jo Brahman banenge pavitra.
And those who will become pure Brahmins.
Vinash ke period mein, atom bombs ke phatake ke period mein.
At the time of destruction, when the atom bombs blast,
वो भगवान से पाल लेंगे, प्रसन्न रहेंगे.
They will take the sustenance of God and live happily.
कुरान में कयामत का बहुत जिक्र है.
In the Quran, कयामत has been mentioned a lot.
मुसलमान भी इस बात को जानते हैं.
The Muslims too know this fact.
कि विनाश के पीरियड में खुदा के बंदे बहुत आराम से रहेंगे.
That at the time of destruction, the children of God will live very comfortably.
और जो खुदा की वंदना नहीं करने वाले होंगे.
And those who will not worship God.
माथा टिकाने वाले नहीं होंगे, माने माथा नहीं झुकाएंगे, अपने अहंकार में रहेंगे.
Those who will not touch their forehead, meaning bow their head and will live in their own ego.
उनको बहुत दुख झेलने.
Will have to suffer a lot of sorrow.
और दुख झेलते झेलते खून खराबा होते होते आखिर बस में भूत हो जाए.
And while they continue to suffer sorrow, while the bloodshed continues, ultimately they will burn to ashes.
जो आने वाली नई दुनिया है, जो आने वाला सत्ययुग है, उस सत्ययुग में उनको जगह नहीं मिलेगी.
They will not get a place in the coming new world, in the golden age, Satyug.
क्योंकि उनकी उन्होंने अपनी आत्मा को सत्य नहीं बनाया.
Because they haven't made their soul true.
जो कहते हैं सत्य चित्त आनंद स्वरूप.
It is said the form of Sat, that is true, Chit, that is living, Anand, that is blissful for God.
भगवान का संग नहीं किया.
They didn't keep the company of God.
भगवान का संग करेंगे तो आत्मा में सत्य चित्त आनंदमयता के रूप आएंगे, गुण आएंगे.
If they keep the company of God, the soul will develop a truthful, living and blissful form and the virtues.
असुरों का संग करेंगे जो आज दुनिया करती चली जा रही.
If they keep the company of demons, like the people of today's world are doing.
खास करके भारत के पढ़े लिखे नौजवान, कन्याएं और कुमार, विदेशी सभ्यता से इतने प्रभावित हो गए हैं.
Especially the learned youth of India, the Kanyas and Kumars, they are influenced by the foreign civilization.
विदेशी पढ़ाई से इतने प्रभावित हो गए हैं कि वो ईश्वरीय पढ़ाई को बिल्कुल महत्व ही नहीं देते.
They are influenced by the foreign education to such an extent that they don't give importance at all to godly knowledge.
अरे भगवान को सदगुरु कहा जाता है.
अरे God is called the Sadguru.
सदगुरु कहा जाता है और सिख लोग कहते हैं एक सदगुरु अकाल गुरु.
He is called the Sadguru and the Sikhs say एक सदगुरु अकाल मूर्त. One Sadguru is an imperishable person.
एक ओंकार निरंकार, एक ही सदगुरु है बाकी सब है गुरु.
एक ओंकार निरंकार, only one is the Sadguru. The rest of them are all gurus.
तो जब एक ही सत्य माने सच्चा गुरु है तो बाकी गुरु क्या हो गए?
झूठ.
So when only one is the truth, meaning the true guru, what are the other gurus?
झूठे गुरु.
They are false gurus.
सारे गुरु गुसाए जो है शक्ति को नीचे ले गए.
All the gurus and holy men took the world downwards.
भगवान के स्वरूप को खुद नहीं जानते लेकिन दूसरों को ज्ञान बढ़ाते रहते.
They themselves don't know the form of God, but they keep teaching knowledge to the others.
सारी दुनिया का डब्बा गोल हो गया.
The whole world has become unsuccessful.
सारी दुनिया की मति भ्रम हो गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई.
The whole world is perplexed, that is confused, मति भ्रम, and their intellect is corrupted.
कैसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई?
In what way was the intellect corrupted?
जिस डाल पर बैठे हुए उसी डाल को काटे.
They cut the same branch on which they are sitting.
एटम बम बनाने वालों को भारत के जो विद्वान आचार्य हैं, वो बहुत ऊंचा समझते हैं या नीचा समझते हैं?
Do the scholars and the learned people of India consider those scientists who make atom bombs to be very high or low?
बहुत ऊंचा समझते हैं.
They consider them to be very high.
ये नहीं समझते उनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई पड़ी है.
They don't understand that their intellect is corrupted.
जिस दुनिया में बैठे हैं उसी दुनिया का संहार करने के लिए उन्होंने शस्त्र तैयार कर लिए.
They have prepared weapons to destroy the same world in which they are living.
और उन शस्त्रों को भी विस्फोट करने की अब उनमें ताकत नहीं है.
And now they don't have the power to even blast those weapons.
इतनी हिम्मत नहीं है.
They don't have that much courage.
वो कार्य भी परमात्मा को कराना पड़ता है, शंकर द्वारा विनाश.
The supreme soul has to enable even that task. The destruction is through Shankar.
हर हर पापों का हरण करता है.
हर हर he takes away the sins.
बम बम जब बमों के फटाके होते हैं, तब दुनिया झुकती है.
बम बम when the bomb blasts, the world bows down.
फिर पछताए होता था जब चिड़िया चुन गई खेत.
What is the use of crying over spilt milk?
फिर तो कोई मतलब ही नहीं.
Then there is no meaning in it, that is in repenting.
अरे बुद्धि का अहंकार, जो बुद्धिमानों की बुद्धि कहा जाता है भगवान, उसके सामने अपनी बुद्धि का अहंकार क्यों दिखाना?
अरे द ईगो ऑफ द इंटेलेक्ट, गॉड इज कॉल्ड द इंटेलेक्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स. व्हाई शुड वी शो द ईगो ऑफ अवर इंटेलेक्ट इन फ्रंट ऑफ हिम?
इसलिए अर्जुन से कहा, अर्जुन तू कोरा कागज बन जा.
दैट इज व्हाई ही टोल्ड अर्जुन, अर्जुन बिकम अ ब्लैंक पेपर.
तू जो कुछ पढ़ा लिखा है वो सब
भूल जा.
Forget all that you have studied.
तूने डागली पढ़ाई पढ़ी होगी.
You might have studied the Dogli teaching.
ये डागली पढ़ाई जो भारत में आई है वो विदेशियों से आई है.
The Dogli teaching has come to India from the foreigners.
ये dog and witches बनाने वाली पढ़ाई है.
This Dogli teaching makes us dogs and witches.
कुत्ता कुतिया बनाने वाली पढ़ाई.
It is the teaching which makes us dogs and bitches.
Asli padhai to devatv wali padhai, Bhagwan padhata hai.
God teaches the real teaching, the divine teaching.
Nar ko Narayan banane wali padhai.
The teaching of making Narayan from Nar.
Wo aakar ke Rajyog sikhata hai.
He comes and teaches Rajyog.
Us Rajyog mein raaj bhara hua hai.
A secret is filled in that Rajyog.
Ki kaise istri ka sang karte hue bhi, indriyon se karma karte hue bhi, कोई भी इंद्रिय का संग करते हुए भी बुद्धि को एकाग्र किया जा सकता है.
How the intellect can be concentrated while keeping the company of a woman, while being in the company of the organs, while being in the company of any organs?
लेकिन ये ज्ञान परमात्मा ही सिखा सकता है.
But only the supreme soul can teach this knowledge.
और कोई मनुष्य गुरु राजयोग नहीं सिखा सकता.
No other human guru can teach Rajyog.
Acharya Rajneesh kehte kehte mar gaye. Yog kya cheez hai to kya batate the?
Acharya Rajneesh died saying this. If asked what is yog, then what did he used to say?
Bhog mein yog samadhi lagave.
That is, you should attain samadhi in yog through bhog.
That is, experiencing bodily happiness.
Are tum mar kyun gaye?
अरे देन व्हाई डिड यू डाई?
भोगी बना के अपने चेलों से पाटों को चले गए.
यू लेफ्ट हैविंग मेड योर डिसाइपल्स इनटू भोगीज.
अभी भगवान कहता है मैं तुमको वो बुद्ध योग सिखाने आया.
नाउ गॉड सेज आई हैव कम टू टीच द कनेक्शन ऑफ द इंटेलेक्ट.
मिसाल के तौर पर मिसाल भी बताई दिए.
For example, an example was also given.
जैसे महबूब अपनी महबूबा की याद में होता है, रास्ता चलते चला जाता है, आंखें खुली हुई होती है.
Just as a lover is in the remembrance of his sweetheart, he walks on a path, his eyes remain open.
कौन उसकी आंखों के सामने से निकल गया वो उसे पता नहीं लगता. क्यों नहीं पता लगा?
He doesn't know who passed in front of his eyes. Why doesn't he know?
क्योंकि बुद्धि दूसरी जगह एकाग्र थी.
He doesn't know because the intellect was concentrated somewhere else.
तो ये और इंद्रियों का भी यही काम है.
So the other organs also have the same task.
जैसे आंख का मिसाल लिया.
Just as the example of the eyes was given.
कि आंख ने अपना विषय ग्रहण नहीं किया.
That the eyes didn't perceive what was in their own field of vision.
उसको दिखाई नहीं पड़ा आंखों के सामने कौन कौन गुजर गया.
He was not able to see who passed in front of his eyes.
ऐसे कान नाक मुख और जो भी भ्रष्टेंद्रिय है उनका भी यही हिसाब.
Similarly, the ears, nose, mouth and whichever corrupted organs are there, they too have the same account.
कि संग में आते हुए भी निसंग कैसे रहा जा सकता है?
That even while coming in connection, how they can remain without connection?
उसका मिसाल संपूर्णता का मिसाल शंकर जी को दिखाया गया.
The example of it is, the example of completeness is shown with Shankar ji.
शंकर जी का भोजन क्या था?
What was Shankar ji's food?
पेय क्या था? क्या पीते थे?
What was his drink? What did he drink?
अरे कि उनके हाथ में कोई पात्र दिखाया जाता है?
अरे is any bowl shown in his hand?
कौन सा पात्र दिखाया जाता है?
Which bowl is shown?
विष पात्र.
A bowl of poison.
जो सागर मंथन से विष निकला, विषय विकार निकले.
The poison which emerged in the churning of ocean, the vices which emerged.
उन विषय विकारों को वो पी गए.
He drank those vices.
हर मनुष्य आत्मा के अंदर वो विषय विकार भरे हुए.
Those vices are filled in every human soul.
वो विषय विकार उन्होंने पी लिए.
He drank those vices.
उनको असर नहीं हुआ.
He was not affected.
नहीं तो विष पीने के बाद मनुष्य मर जाता है.
Otherwise, after drinking poison, human beings die.
उनका विषय विकार कहाँ तक गया?
Where did his vices get stuck?
कैसे गले में गया?
They people say it was stuck in his throat.
गले से आवाज निकलती है?
The voice comes out of the throat, doesn't it?
तो उन्होंने जो आवाज निकाली,
सो द वॉइस दैट ही प्रोड्यूसेस,
वो ज्ञान की आवाज में, ज्ञान अमृत में इतना ताकत है कि विष को भी खलास कर सकती
है। दैट वॉइस ऑफ नॉलेज, दैट नेक्टर ऑफ नॉलेज हैज सो मच पावर दैट इट कैन डिस्ट्रॉय इवन द पॉइजन।
नहीं तो ये नियम है,
अदरवाइज इट इज अ रूल,
जो व्यक्ति जितना जाति विकारी होगा उसकी बुद्धि में ज्ञान अमृत ठहर नहीं सकता।
टू द एक्सटेंट अ मैन इज विशियस, द नेक्टर ऑफ नॉलेज कांट रिमेन इन हिज इंटेलेक्ट।
गाय है, शेरनी का दूध
सोने के पात्र
में ठहरता है, मिट्टी के पात्र को फोड़ के निकल जाता है।
देयर इज अ प्रेज, द मिल्क ऑफ अ लायनेस स्टेज इन अ गोल्डन वेसल, इट ब्रेक्स द वेसल ऑफ मड एंड कम्स आउट।
ये शरीर है मिट्टी का पात्र,
दिस बॉडी इज द वेसल ऑफ मड,
अगर विकारी है तो,
इफ इट इज विशियस,
मन बुद्धि में विकारी मनन चिंतन मंथन चलता है भ्रष्ट इंद्रियों का,
इफ विशियस चर्निंग गोज ऑन ऑफ द करप्टेड ऑर्गन्स इन द इंटेलेक्ट,
तो बुद्धि विकारी है मन मिट्टी का पात्र,
देन द इंटेलेक्ट इज विशियस मीनिंग इट इज अ वेसल ऑफ मड।
जो शरीर मिट्टी का पात्र होगा उसमें वो शीरण शेरनी का दूध नहीं थमेगा।
The milk of lioness will not remain steady in the body that is a vessel of mud.
जो ब्रह्मा के रूप में एक शेर दिखाया जाता है तिरंगे झंडे में,
a lion is shown in the form of Brahma in the tricolor flag.
नोटों में भी वो तीन शेर दिखाए जाते हैं,
those three lions are also shown in the rupee notes.
झंडे में भी वो तीन शेर का चित्र दिखाया जाता है,
that picture of three lions is shown in the flag as well.
वो तीन शेर ब्रह्मा विष्णु शंकर ऐसे शेर हैं,
those three lions Brahma Vishnu and Shankar are such lions,
जिन्होंने ज्ञान की दहाड़ मार करके दुनिया को चेंज कर दिया,
which made a roar of knowledge and changed the world.
संसार रूपी जंगल जो कांटों का जंगल बन गया है उसे फूलों का बगीचा बना दिया,
they made the jungle like world which has become the jungle of thorns into the garden of flowers.
Kiski mat par,
on whose direction?
Ek shiv nirakar ki mat,
on the direction of one incorporeal shiv.
Wo shiv nirakar ek hi aisi atma hai,
that incorporeal shiv is only one soul of that type.
Wo bhi jyoti bindu, hum atma bhi jyoti bindu hai,
he is a point of light as well as we souls are points of light.
हम बिंदु बिंदु आत्मा का वो बाप है, परम पिता है,
he is the father of us point like souls, he is the supreme father.
उसका कोई पिता नहीं,
he doesn't have any father.
वो बाप आकर के हम आत्माओं को परिवर्तन करते हैं,
that father comes and transforms our souls,
बुद्धि योग सिखा करके,
by teaching us the connection of intellect,
राज योग सिखा करके,
by teaching us राज योग,
वो राज योग सिखाने आया है,
he has come to teach Rajyog.
पहले सहज और साधारण रूप में आता है,
first he comes in a simple and ordinary form,
बाद में फिर अर्जुन को अपने विकराल रूप का भी साक्षात्कार कराता है,
and then later on he makes Arjun experience the vision of his fearsome form as well.
कहते अर्जुन को विश्व रूप का दर्शन हुआ,
they say Arjun saw the universal form that is Vishwarup.
तो जब विकराल रूप का साक्षात्कार कराता है,
so when he makes him experience the vision of his fearsome form,
तो अर्जुन अपने हथियार छोड़ देता है,
अर्जुन accepts defeat,
अब मैं कोई निर्णय नहीं करूँगा,
and says now I will not do any argument that is jira.
अभी वो निराकार ज्ञान सूर्य इस सृष्टि पर आया हुआ है,
now that incorporeal son of knowledge has come on this world,
brahma ke tan mein aaya mount abu se jo vaani uchcharan ki,
he came in the body of brahma the versions which were narrated at mount abu,
wo brahma ne badi maa wale maa badi maa ka roop tha,
that was the form of brahm means big and maa means mother the senior mother,
aakhri bacche jo hote hain wo maa ki baat ko to mante hi nahi,
those who are devilish children they certainly do not accept the mother's words at all,
maa ke upar aur haavi ho jate,
Instead, they dominate the mother even more.
इसीलिए ब्रह्मा का हार्ट फेल हो गया.
That is why Brahma suffered a heart failure.
इसी पहले ने ऐसा जान बाघ का तीर मारा जो उनका हार्ट फेल हो गया.
Some hunter, that is Bahelia, hit such an arrow of words that his heart failed.
शास्त्र में भी ये गायन है.
There is praise in the scriptures as well.
कि कृष्ण के अंतिम समय में.
During the end period of Krishna.
कोई बहेलिया ने उनके पांव में तीर मारा.
Some hunter hit an arrow at his feet.
पांव से कहीं पहुंचा जाता है.
Through feet we reach somewhere.
कहते हैं तुम्हारे पांव वहां तक नहीं पहुंचेंगे जहां तक गुरुजी के पांव पहुंचे हुए.
They say your feet will not reach the place where the feet of the Guruji have reached.
पांव का मिसाल बुद्धि से दिया जाता है.
Feet are compared to the intellect.
जैसे पांव से पहुंच होती है वैसे बुद्धि से भी पहुंच होती है.
Just as we reach somewhere through feet, similarly we also reach through the intellect.
तो ये शास्त्रों में कवियों ने कविताएं लिखी है रूपक वाली.
So poets have written allegorical poems in the scriptures.
उनके अर्थों को क्या कवि समझते थे?
Either the poets understood their meanings.
या तो अंत में जब कलयुग के अंत में ज्ञान सूर्य रवि आता है तो वो उनके सही अर्थ बताते हैं.
Or when the son of knowledge, that is Ravi, comes at the end of the Aryan age, he tells its correct meanings.
वो कवि जिन्होंने वो कविता रखी वो तो कविता रख के चले गए.
The poets who wrote those poems wrote it and went away.
2,500 साल हो गए उन शास्त्रों को रखे हुए.
2,000 to 2,500 years have completed since those scriptures were written.
मनुष्य विकारी बनता चला गया. विकारी बुद्धि से उन्होंने विकारी इंटरप्रिटेशन कर दी.
ह्यूमन बीइंग वेंट ऑन बिकमिंग विशियस. विद अ विशियस इंटेलेक्ट दे मेड विशियस इंटरप्रिटेशन.
उन शास्त्रों की विकारी व्याख्या कर दी.
दे मेड विशियस इंटरप्रिटेशन ऑफ दो स्क्रिप्चर्स.
पतन होता गया.
द डिग्रेडेशन कंटिन्यूड.
अभी वो ज्ञान सूर्य रवि सृष्टि पर आया हुआ है.
नाउ द सन ऑफ नॉलेज रवि हैज कम ऑन दिस वर्ल्ड.
सारी सृष्टि को परिवर्तन करके जाएगा.
He will go after transforming the whole world.
ऐसे नहीं कि वो ब्रह्मा के तन में आकर के ज्ञान सुना के चला जाता है.
It is not that he comes in the body of Brahma and goes away after narrating the knowledge.
फिर पति शक्ति को पावन बनाने के लिए कोई दीदी दादी दादाएं आते हैं.
Then to transform the sinful world into pure world, some दीदी दादी दादास come.
जो आकर के उसको परिवर्तन करते हैं ये भी उनके बुद्धि का अहंकार है.
Who transform it after coming. These two is the ego of their intellect.
कितना अहंकार दिखाते हैं.
They show so much ego.
त्रिमूर्ति को गायब करते जा रहे हैं.
They are vanishing the त्रिमूर्ति.
और अपनी तीन मूर्तियां पोस्टरों में छपाते चले जा रहे हैं.
And are going on printing their own three idols in the posters.
ऊपर शिव निराकार का चित्र लगा देते हैं.
They show the picture of incorporeal Shiv on the top.
बड़े बड़े मेले मला खड़े बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम करते चले जा रहे हैं.
दे आर कंटिन्यूइंग टू अरेंज बिग फेयर्स एंड बिग मेगा प्रोग्राम्स.
वो भी पब्लिक के पैसे से.
एंड दैट टू विद द मनी ऑफ द पब्लिक.
भीख मांग मांग करके.
बाय बेगिंग.
भगवान ने भले वाणी में बोला है मांगने से मरना भला.
ऑल्दो गॉड हैज सेड इन द वाणी मांगने से मरना भला. दैट इज इट इज बेटर टू डाई देन टू बेग.
कोई ईश्वरीय कार्य से स्वतः अगर देता है तो उसका पैसा सफल करना है.
If someone gives for godly task on his own wish, then we have to make his money fruitful.
बाकी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना, भीख नहीं मांगना, इशारे से भी नहीं मांगना.
As for the rest, we shouldn't spread our palms in front of anyone. We shouldn't beg. We shouldn't beg even indirectly. That is इशारे से.
ब्राह्मणों का काम मांगना नहीं है. ब्राह्मण जो सत्य होते हैं, वो तो भगवान के बच्चे होते हैं.
The task of Brahmins is not to beg. Those who are true Brahmins are certainly the children of God.
वो तो दाता है, दुनिया को देने वाले हैं.
They are indeed the givers who give something to the world.
उन ब्राह्मणों की आज भी पूजा होती है.
Even today, those Brahmins are worshipped.
हैं तो झूठे ब्राह्मण.
As far as today's Brahmins are concerned, they are indeed the false Brahmins.
सिर्फ परंपरा चली आ रही है.
Just the tradition is going on.
सच्चा ब्राह्मण ब्रह्मा की ओर आगे होता है.
The true Brahmin is an offspring of Brahma.
Brahman is? So Brahman bhi nahi?
If there is no Brahma, then there are no Brahmins either.
Jhoothe Brahman? Brahma ke sharir ko mahatva dete hai.
The false Brahmins give importance to the body of Brahma.
Aur jo sakte Brahman hai?
And those who are the real Brahmins,
wo Brahma ke mukh se nikli hui vani ko mahatva dete.
They give importance to the versions that have emerged from the mouth of Brahma.
Kyunki wo vani nirakar Shiv ki vani hai.
Because that version is the version of the incorporeal Shiv.
Wo kahe jaate hai mukhvanshavali Brahman, shesh Brahman.
They are called the mouth-born Brahmins, that is mukhvanshavali Brahmin, the elevated Brahmins.
Aur jo Brahma ke chole ko bahut mahatva dete hai, sharir ko bahut mahatva dete hai.
And those who give more importance to the body of Brahma,
sharir se chipke rehte hai.
Who remain attached with his body,
sharir se prapti karte hai. Wo hai kukhvanshavali.
Who make attainment through his body are kukhvanshavali, that is lab-born progeny.
Unhone bodh karat liya hai.
They have enjoyed the pleasure of the lab.
Vani karat nahi liya.
They haven't enjoyed the pleasure of the vani.
Abhi wo sab clear hone wale.
Now all that is going to become clear.
Wo kukhvanshavali ravan kumbhakarna meghna to kon kon hai, wo chehre abhi pratyaksh hone wale.
Who are those Kukhvanshavali, Ravan, Kumbhakaran, Meghnath? Those faces are going to be revealed now. And those Brahmins who are elevated Purusharthis, that is makers of special effort for the soul, like Guru Vasishtha Vishwamitra, who are a handful, are going to be revealed as well.
Kauravon ki sankhya kitni dikhai jati hai aur Pandavon ki sankhya kitni dikhai jati hai.
What is the number of Kauravas that is shown and what is the number of Pandavas that is shown?
Pandav uliyon par gine jane yogi 5 dikhai jati
hai. Pandavas are shown to be 5 and can be counted on fingers.
5 nahi hote hamesha.
They are not always 5.
Shastron mein bhi likha hua hai.
It is written in the scriptures as well that the 5 Pandavas increased to 7 armies, that is 7 Akshoni in number. Before, the whole world was 18 armies, that is 18 Akshoni. Amongst them, 7 armies emerged to be Pandavas.
Pande ki aulad.
The offspring of Panda.
Panda kaha jata hai jo teerth yatra karata hai.
Those who take on a pilgrimage are called Pandas, that is guides.
Teertha. Teer mane kinara lagana. Kinara. Tha mane sthan.
Teertha. Teer means to take across the shore and tha means place.
Kinare lagane ka jo sthan dikhata hai.
The one who shows the place to put us ashore.
Ek kinare laga deta hai. Kya? Hum Bhavasagar mein pade hue hai kya?
He puts us ashore. What? Are we fallen in the ocean of life? That is Bhavasagar.
Vishay vaitrani mein pade pade hue hai kya?
Are we fallen in the river of vices? That is Vishay vaitrani.
Ha? Sari duniya Vishay vaitrani mein padi hui.
Yes, the whole world is fallen in the river of vices.
सारी दुनिया सागर में पड़ी हुई है, विषय सागर में.
The whole world is fallen in the ocean of vices, that is विषय सागर.
भगवान आता है हमारी शरीर रूपी नैया को एक किनारे लगाता.
God comes and puts our boat like body on one shore.
इसलिए वो पंडा है, असली पंडित वो है.
That is why he is the panda. He is the real Pandit.
वो पंडा आता है तो उसके जो बच्चे बनते हैं सच्चे अर्थों में ब्रह्मा के मुख से पैदाइश होने वाले वो पांडव कहे जाते.
When that panda comes, those who become his children, in the real sense, those who are born through the mouth of Brahma are called Pandavas.
अभी वो पांडव तैयार हो रहे हैं.
Now, those Pandavas are becoming ready.
और ये भी बता दिया है. ये पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा जिसमें एक भी असुर प्रवेश नहीं कर सकेगा.
And this has been said as well, that this fort of the Pandavas will become such that not even a single devil will be able to enter it.
क्या हमारा संगठन जैसे ईंटे होती है संगठित की जाती है तो किला तैयार हो जाता है, महल तैयार हो जाता है.
A fort means gathering. Just as when the bricks are gathered, a fort becomes ready, a palace becomes ready.
तो ऐसे ही चैतन्य ईंटों का महल तैयार हो रहा है.
So similarly, this palace of living bricks is becoming ready.
भगवान स्वयं आकर के ये किला तैयार कर रहा है.
God having come is himself preparing this fort.
ये किला तैयार होगा.
When this fort becomes ready,
पहले शेष के शेष जो ईंटे हैं, चैतन्य आत्माएं हैं, उनका संगठन तैयार होगा.
First, the gathering of the most elevated bricks. The living souls becomes ready.
Kila kaho, mala kaho.
You may call it a fort or a rosary.
Koi dharma aisa nahi hai jisme mala na ghumai jati.
There is no such religion in which a rosary is not rotated.
Ye mala ke madke atma rupi sangathan ki yaadgar hai.
These beads of the rosary are a reminder of gathering of the souls.
जिसे आत्माओं को भगवान ने आकर के राजयोग ज्ञान सिखा करके संगठित किया, माला बनाई.
The elevated souls whom God taught राजयोग, the knowledge when he came, gathered them, made the rosary.
वो माला सब धर्मों में सिमरी जाती है, स्मरण की जाती है.
That rosary is recollected in every religion. It is remembered.
आज भी क्रिश्चियन लोग भी माला घुमाते हैं.
Even today, Christians rotate the rosary.
मुसलमान लोग भी माला घुमाते हैं.
As well as the Muslims rotate the rosary.
यहूदी भी माला घुमाते हैं.
The Jews rotate the rosary as well.
पारसी भी माला घुमाते हैं, बौद्ध भी माला घुमाते हैं, जैन भी माला घुमाते हैं.
Parsis rotate the rosary, the Buddhists rotate the rosary, and the Jains rotate the rosary too.
उनसे पूछा जाए इस माला का ऐसा क्या महत्व है जो हर धर्म में माला की इतनी मान्यता है.
If they are asked what is the importance of this rosary, so that in every religion the rosary has so much value.
माला है संगठन रूपी माला.
The rosary is the rosary like gathering.
जो भगवान ने आकर के शेष आत्माओं का संगठन बनाया था.
The gathering of the elevated souls which God made when he came.
उस संगठन में सबसे श्रेष्ठ आत्माएं हैं आठ.
In that gathering the most elevated souls are eight.
हमारी भारतीय परंपरा में जो भी अनुष्ठान किया जाता है.
In our Indian tradition whichever rituals are performed.
उस अनुष्ठान में.
In those rituals.
उन आठ नौ आत्माओं को आज भी पूजा जाता है.
Those eight nine souls are worshipped even today.
कोई भी अनुष्ठान करेंगे.
Whichever rituals will be performed.
मरने के पहले करेंगे, मरने के बाद करेंगे, शादी ब्याह में करेंगे.
Whether it will be performed before death, after death, in marriage ceremonies.
यज्ञ पवित्र में करेंगे.
In the ceremony of holding the holy thread, that is यज्ञ पवित्र.
वो नवग्रह पूजे जरूर जाते.
Those nine planets, that is Navgrah, are certainly worshipped.
वो आसमान के ग्रह हैं, जड़ सितारे. ये हैं धरती के चैतन्य सितारे.
Those planets of the sky are non-living stars. These are the living stars of earth.
वो आसमान के जो सितारे, ग्रह, नक्षत्र हैं, वो दुनिया को चलाने वाले नहीं हैं.
Those stars, planets and heavenly bodies, that is nakshatra of the sky, are not the ones who manage the world.
Duniya chaitanya ke dwara chalai jayegi ya jad ke dwara chalai jayegi?
Will the world be managed through living one or the non-living one?
Duniya ka parivartan chaitanya atmaon ke dwara hoga ya jad ke dwara hoga?
Will the transformation of the world take place through living souls or non-living souls? Everyone said through the living ones.
चैतन्य में ज्यादा ताकत होती है या जड़त्व में ज्यादा ताकत होती है?
Does the living have more power or does the non-living have more power?
चैतन्य आत्मा में ज्यादा ताकत.
The living soul has more power.
लेकिन उस आत्मा में जो आत्मा सोई हुई पड़ी है.
But that soul which is lying asleep.
अज्ञान निद्रा में उसमें ये ताकत नहीं है.
In the sleep of ignorance doesn't have this power.
वो ताकत नहीं आ सकती.
That power can't come in it.
जो आत्मा जागृत हो जाती है,
the soul which awakens,
ईश्वरीय ज्ञान में जागृत हो जाती है, वो आत्मा में वो शक्ति आ जाती है कि वो अपने को तो क्या सारी दुनिया को परिवर्तन कर सकती है.
The soul which awakens in the godly knowledge attains the power that he can transform not only himself but also the entire world.
इसलिए आज भी गायन चला आ रहा है. भारत की भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट भी गीत गा रही है.
That is why even today it is praised the corrupt government of India is singing the song as well.
विश्व विजय करके दिखलावे तब होवे परपूर्ण हमारा झंडा ऊंचा रहे.
That is, our war will accomplish when we achieve victory over the world. Let our flag remain high.
Oh, sir.